यज्ञ स्थापना में आदि काल में समय प्रति समय बाबा ने विशेष रत्नों को चुना और उसके द्वारा अनेक आत्माओं को अनेक स्थानों पर अपने शिवालय स्थापन किए। ऐसे ही भारत देश के अंदर भिन्न भिन्न कोने में अपनी लौकिक सर्विस के प्रति जाकर के हर स्थान पर बाबा का घर निर्माण करने के अगर कोई निमित्त बना हो तो वो मूर्ति हमारे सामने बैठी है। आदरणीय भ्राता मोहन भाई सिंगल, हम सभी भाई जी का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। यज्ञ के आप ऐसे सर्विसेबल रतन हैं जो न दिन देखते न रात देखते हैं। बचपन से ही आप बाबा के हैं, साकार बाबा की बहुत समीप से आपने पालना ली हुई है। लौकिक सर्विस में आप ONGC में बहुत ही ऊंची पोस्ट पर रहे और जब आपने देखा कि यज्ञ में आवश्यकता काफी है स्वयं की, तो उन्होंने स्वैच्छिक निवृत्ति लेकर के बाबा के यज्ञ में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आप ज्ञान सरोवर के अंदर हो रही विंग की सर्विस को डायरेक्टर बनकर के देखभाल करते रहते हैं और साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हम सभी आपका फिर से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का विषय है मन जीते जगत जीत। आदरणीय मोहन भाई,
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर के इस रीति से ओम शांति बोलेंगे, जैसे यज्ञ के आदि में सभी ब्रह्मा वत्स साकार बाबा के साथ मिलकर के बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसे छोड़ते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ शांति की मधुर ध्वनि है जिसे उसके अर्थ में स्थापित होकर के यदि सारा दिन में कई बार केवल उच्चारण ही न किया जाए बल्कि उसके मनन चिंतन और उस स्थिति में स्थित हो जाए तो ये ही वास्तव में मन जीते जगत जीत का रास्ता बहुत सहज भाव से ही स्पष्ट कर देती है। जहां पर भी जीत अक्षर होता है वहां क्या होती है? खुशी, आनंद, शक्ति, सभी कुछ वहां पर जीत के साथ आ जाता है। और संसार में तो बहुत छोटी मोटी जीत होती रहती हैं, लेकिन जब जगत जीत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रीति से बहुत ऐसी खुशी होनी चाहिए जैसी बाबा ने आज और कल भी कही। क्या होना चाहिए उस खुशी में? रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बहुत ही खुशी होती है तो रोमांच खड़े हो जाते हैं, तो बाबा वो ही जगत जीत का लक्षण बताते हैं। लेकिन उस जगत जीत की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए? हमारी भारतीय संस्कृति में यह जो कहा है, मन जीते जगत जीत, इसके पीछे बहुत बहुत गहरा अर्थ समाया हुआ है। अक्सर लोग जगत को ये संसार ही समझ लेते हैं कि जगत जीत यानी कि जगत के अंदर जितने भी मनुष्य हैं सबके ऊपर विजय पाने को ही जगत जीत बोला जाता है। लेकिन बाबा ने इससे और भी ऊंची स्थिति बताई है। जगत में और कौन आता है मनुष्य के अलावा? है, देखो, मनुष्य है, मनुष्य के अलावा पशु, पक्षी, जीव जंतु, ये सब भी आते हैं। और क्या आता है? प्रकृति के पांच तत्व, ये सब भी आते हैं। और इसीलिए जगत जीत के अंदर प्रकृति जीत भी अंदर समाया हुआ है। तो इसलिए ये विषय तो बहुत बहुत लंबा है, लेकिन हम कुछ उन पहलुओं पर ही अधिक विचार करेंगे थोड़ा, जो ज्यादातर बहुत एक्सप्लेन्ड नहीं है, ज्यादा विस्तार में नहीं है, और जिनकी आवश्यकता है जगत जीत बनने के लिए। और हमारे सबके सामने रोल मॉडल कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो ही एक आत्मा है जो कि रोल मॉडल है, जिसने जगत जीत बन करके दिखाया। और जगत जीत बना यहां पर तो बस सतयुग से लेकर वो जगत जीत बनने का सिलसिला बाबा का शुरू हो गया। तो इसीलिए वो हमारे जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का, उसके आधार पर भी हम कुछ बातों को और स्पष्ट करेंगे कि कैसे जगत जीत बने। तो एक तो मन जीते जगत जीत, मन की बात है। हम सभी जानते हैं, भक्ति में भी कह देते हैं, क्या करें, मन बड़ा चंचल है, घोड़ा है, भाग जाता है, वश में नहीं आता है, अक्सर करके ऐसे कहते आए हैं भक्ति मार्ग में। और अभी भी हम सबका ये अनुभव है कि जब सब कुछ जानकर भी मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, और ज्ञान के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह जानकर भी जब हम योग लगाने बैठते हैं, योग लगाते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो मन इधर उधर भाग जाता है। फिर मन को पकड़ के लाना पड़ता है, फिर थोड़ी देर मन टिकता है, फिर कोई, भले अभी तो बाबा ने भी सर्टिफिकेट दिया है गुलजार दादी के थ्रू। एक बार संदेश आया था कि बाबा बच्चों को एक बात का तो सर्टिफिकेट देता है कि मेरे जो मेजोरिटी बच्चे हैं उनमें विकारी संकल्प तो नहीं है, लेकिन कौन से संकल्प हैं? व्यर्थ संकल्प बहुत है। इसीलिए जैसे विकारी संकल्प से एकदम परहेज हो गया है, वो नहीं आते हैं, ऐसे ही बच्चों को अब व्यर्थ संकल्पों को भी ऐसा समझना चाहिए जैसे वो विकारी संकल्प है। इसलिए उसको इतना दूर थोड़ा भी अगर व्यर्थ संकल्प टच करे तो भी उसे तुरंत ऐसा समझ करके हटा देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए जैसे कि वो विकारी संकल्प है। इसीलिए बाबा ने एक सर्टिफिकेट तो दिया मेजोरिटी बच्चों को। अब और मन का काम ही है संकल्प करना, हम सभी जानते हैं। तो समझो हम सब बच्चे हाँ इतने वर्ष ज्ञान लेते हुए भी हो गए, बहुत है भले कोई कम ज्ञान वाले भी होंगे, लेकिन यहाँ भट्टी में आते हैं 25 50 60 70 साल वाले भी आते हैं, हमें ही 50 वर्ष से ज्यादा हो गया। तो जब हम देखते हैं कि इतने वर्ष होते भी हम अभी 100% नहीं कह सकते कि मन को जीत लिया है, तो ब्रह्मा बाबा जो उल्टी सीढ़ी चढ़ा हुआ था, जो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में था, नौकरी पूरा धंधे में था, बाल बच्चों वाला था, पूरा सांसारिक था, तो बाबा की भी कैसी मनोस्थिति होगी जब शुरू में ज्ञान में आए। वो तो बाबा ने कई बार बताया है, लेकिन उस मन को जीतने के लिए बाबा ने क्या किया शुरू में, क्योंकि बाबा के पद चिन्हों पर ही चलना है ना, मन जीते जगत जीत। तो बाबा ने क्या किया, जब देखा बाबा ने कि बैठता हूं लेकिन मन भाग जाता है, तो बाबा ने क्या किया, बैठ करके मन को पत्र लिखा। जानते हैं क्या पत्र लिखा, शायद पुराने जानते हो हम लोगों को भी, जो बाबा ने मन को पत्र लिखा था उसकी, वो तो सिंधी में लिखा था, उसकी कॉपी हिंदी में करके हमारे वरिष्ठ दादा आनंद किशोर जी होते थे, उन्होंने पुराने वरिष्ठ भाइयों को बहुत साल पहले 25-30 साल पहले 40 साल पहले वो पत्र की एक एक कॉपी दी थी। बड़ा आश्चर्यजनक पत्र था। बाबा ने पत्र में एड्रेस किया मन को, हे मन, देखो गौर से करना, कुछ लाइनों का ही था लेकिन बड़ा भावपूर्ण था। हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, कर्मचारी है। बाबा ने कहा आत्मा राजा है, मन बुद्धि संस्कार उसके जैसे कर्मचारी है। तो बाबा ने लिखा मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा कर्मचारी है, मंत्री है, तुझे मेरे वश में होना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं तू मंत्री है, लेकिन तूने मुझे मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया और तू शक्तिशाली हो गया कि मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे चलता गया, भागता गया। तू मुझे जहां भी ले जाता रहा मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहा, और इस तरह मैं और कमजोर कमजोर होता चला गया। फिर दूसरे पहरे में बाबा ने मन को एड्रेस करके कहा, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूँ, हो गया हूँ और अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। मैं तुझे ऑर्डर करता हूँ कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा। बाबा ने स्वस्थिति में स्थित होकर मन को ऑर्डर किया और ऐसा ही पत्र बाबा ने बुद्धि को भी लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत कमजोर कर दिया, मुझ आत्मा राजा को। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ हे बुद्धि, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। इस तरह बाबा ने मन और बुद्धि को ऑर्डर किया। लौकिक में भी हम देखते हैं, मानो जब तक कोई सीट पर होता है सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन जब वो सीट पर नहीं रहता, मानो नौकरी में है, रिटायर हो गया या ट्रांसफर हो गया, या अगर पॉलिटिशियन है, कोई हार गया इलेक्शन में, बाहर हो गया पावर के, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। जब तक पावर में है, सीट पर है, तब तक ही सब उसकी बात मानते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा राजा हूं और पहले मुझे कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करने से पहले, चाहे मेरी स्थूल कर्म इंद्रियां हो, चाहे ये सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार हो, इनको ऑर्डर करने से पहले मुझे अपनी स्वस्थिति की सीट पर स्थित हो करके तब उन्हें ऑर्डर करना पड़े, तब वो मेरी सब बात मानेंगे। और ये जगत जीत के रास्ते में हमारा ये पहला चरण होगा कि हम स्वस्थिति में स्थित होकर स्वमान की सीट पर बैठकर तब हम ऑर्डर करें। तो इसीलिए एक तो हम ये देखते चलें, मैं कितना स्वमान की सीट पर स्थित होकर ऑर्डर कर रहा हूं। एक बाबा ने ये कार्य किया। तो फिर बाबा ने देखा, अरे ये मन तो एकदम मेरे वश में है, मन तो एक खिलौना है, बड़ा सहज है मन को, जिसे भक्ति मार्ग में कहते रहे, मन तो वश में किया ही नहीं जा सकता, मन बहुत बहुत चंचल है, घोड़ा है। पहले बाबा भी भक्ति मार्ग में बोलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये ऑर्डर में आ गया। तो एक ये हम भी जब भी देखें तो अपने को यही विजुअलाइज करें कि मैं सीट पर बैठा हुआ हूँ, एक आत्मा राजा, और जब भी जिस शक्ति की मुझे आवश्यकता है उसको मैं ऑर्डर करने से पहले सुमान की सीट पर स्थित हूँ और तब मैं उस शक्ति को ऑर्डर करूँ। बाबा कई बार, साकार बाबा बताया करते थे, देखो बच्चे पहले जमाने में क्या होता था ना, कोई ऑर्डर करने पर भी कई बार क्या होता था, राजा तो ऐसे नहीं बस यूं ताली बजाते थे, इधर से दासियां आते थे और जो हुक्म महाराज, और फिर ऑर्डर करते थे, हाँ दासी ये करो, जो भी ऑर्डर देना होता था। और बाबा कहते थे, देखो बच्चे कई बार मैं विजुअलाइज करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे मेरे बहुत बाबा के ऊपर कारोबार था शुरू की बात, तो बस ऑर्डर किया, मानो शक्ति वो आ रही है दासी, और मैं कहता हूँ अच्छा सहन शक्ति को बुलाओ या समाने की शक्ति को बुलाओ, बस फिर समान की स्थिति में स्थित होके उसको बुला करके ऑर्डर करते थे, हे समाने की शक्ति या सामना करने की शक्ति, मुझे अभी तुम्हारी आवश्यकता है, तुम इस शक्ति को मेरे में जैसे बढ़ाओ, स्थित करो, और फिर मैं अपना कारोबार और सुचारू रूप से कर सकूं। और इस तरह विजुअलाइज करें, और लेकिन ये तभी होगा जब हम पहले अपने सुमान की सीट पर होंगे तो वो शक्ति हम महसूस करेंगे कि कोई संकल्प चल रहा है, किसी कारण से, परिस्थिति के कारण, किसी व्यक्ति के कारण कोई संकल्प चल रहा है, कोई बात हो रही है, वो तुरंत स्टॉप हो जाएगी। हमने खुद बहुत अनेक बार करके देखा है, एकदम वो बिल्कुल जैसे उस पर विजय प्राप्त हो जाएगी और फिर बड़ा सहज रीति से मन हल्का हो जाएगा और अपना कारोबार करते रह सकेंगे, बाबा की याद में स्थित हो जाएंगे, बिल्कुल मन भागेगा नहीं। यही है, जैसे बाबा कई बार कहता है रोज रात को दरबार लगाओ, कई बार कहता है ना अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, यही है। ऐसे रात को सोने से पहले हम दरबार लगाएं, मन जीते जगत जीत की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और क्या होता है इसके लिए, बाबा ने कहा है ये क्यों आवश्यक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो भी पुरुषार्थ हो रहा है वो उस एक घड़ी के लिए हो रहा है जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे। क्यों, क्योंकि ये गायन है, क्या है अंतिम समय का गायन, अंत मते सो गति का गायन, जो अंत में मति होगी, जिस समय आत्मा शरीर छोड़ेगी उस समय जो हमारा विचार होगा उसके आधार पर ही हमारा सारा अगला जन्म होगा। ये नियम है, लौकिक में भी जिन्होंने जॉब की है, नौकरी की है, उन्हें मालूम होता है कि जो लास्ट डे हाँ पे ड्रॉन की होती है, तनख्वाह ली हुई होती है, लास्ट पे सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, तो उसके आधार पर ही पेंशन हो, कुछ ग्रेजुटी हो, कोई भी प्रोविडेंट फंड हो, सबका कैलकुलेशन उसके आधार पर ही होता है और जीवन पर्यंत वो चलता रहता है आगे आने वाला। तो लास्ट जो है पे, ऐसी लास्ट हमारा जो श्वास है इस शरीर के साथ, उसके आधार पर ही हमारा सारा जो है अंतिम इसके आगे का, केवल यहाँ का ही नहीं सतयुग त्रेता का, बल्कि उसका भी और पूरा का पूरा द्वापर और कलयुग, पूरे चक्र का आधार ही हमारा वो अंतिम श्वास है। और अंतिम श्वास का आधार क्या है, जैसी अभी हमारी स्थिति होगी, दिनचर्या होगी, अंतिम श्वास भी वैसा ही होगा। हम सोचे अंतिम में बहुत बढ़िया हो जाए और अभी हमारा याद का चार्ट उतना अच्छा ना हो, पुअर हो, देह देह के संबंधी या पदार्थ उन सब में बुद्धि लगी रहे, तो अंत समय में ऐसा हो नहीं पाएगा कि केवल बाबा और बाबा की याद। जहां पर भी कोई भी अटैचमेंट होगा या किसी से घृणा होगी कोई, तो या अनफिनिश्ड टास्क होगा, कई बार हम सोचते हैं ये करना है, ये कर लेंगे, करते करते अंतिम समय आ जाता है, वो रह जाता है, तो वो अंतिम घड़ी के कारण बस वो ही बात याद आती रहेगी। जैसी आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी तो वो बात याद आती रहेगी और उसके आधार पर फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा उस जगह जहां पर कि उस कार्य को हमें पूरा करना है। इसीलिए ये बाबा ने कहा था लक्ष्य यही रहे कि मुझे कर्मातीत बन के जाना है। मुझे याद है जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था तो शिव बाबा ने ऊपर मम्मा का संस्कार नहीं हुआ था तब तक, शरीर रखा हुआ था, तो बाबा ने कहा मम्मा को कि मम्मा कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आई हो, तो मम्मा चुप रही बाबा, क्योंकि क्या होती है कर्मातीत अवस्था, और बाबा ने थोड़ा बताया तो मम्मा ने कहा जैसे नहीं, तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची अभी शरीर तुम्हारा रखा है उसमें जाओ और कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आओ। तो बाबा उस संदेश में आया तो मम्मा को बाबा ने नीचे भेजा, फिर थोड़े समय के बाद मम्मा ऊपर गए तो बाबा ने पूछा बच्ची अनुभव किया क्या, कि मामा ने कहा कि नहीं बाबा, मैं जब गई तो शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो गया था और मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन कोई भी शरीर में चुरपुर नहीं हुई। और मतलब अनुभव करने का मतलब तो भाई आंख भी खुले, कुछ हलचल हो, कुछ भी हो, तो किसी भी बात का अनुभव नहीं हुआ और इसलिए मैं आ गई। तो बाबा ने कहा बच्ची देखो, कर्मातीत स्थिति के बाद ही आत्मा संपूर्ण बनती है और तभी परम धाम जाएगी। हालांकि पहले तो यही ज्ञान था, पहले बाबा मम्मा जाएंगे, हम सब साथ ही साथ जाएंगे, लेकिन बाबा ने तब से राज खोलना शुरू किया मम्मा के देह छोड़ने के बाद। और इसीलिए अभी तुम्हें फिर जाके जन्म लेना है और जन्म लेने के बाद फिर से तुम्हें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। देखो यज्ञ के नंबर 1-2 जो है वो भी कर्मातीत, बाबा ही एक कर्मातीत बना, मम्मा भी नहीं। फिर बाबा ने फिर बताया कि बस अब पुनः जन्म लेके तुम्हें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो उसके बाद से फिर सभी जानते हैं तब से मामा गए, अभी तो बाबा समय पर जो राज होगा वो खोलेगा। तो इस रीति से जब उन आत्माओं को भी जो निमित्त बनी आत्मा उनको भी कोई कंसेशन नहीं, तो हम सबको भी ना लक्ष्य यही रहना चाहिए कि हर हालत में मुझे इस शरीर में ही कर्मातीत बनना है, दूसरा शरीर न लेना पड़े। चाहे जितनी भी शारीरिक व्याधि हो, परिस्थितियां बहुत अच्छी न हो, अनुकूल न हो, लेकिन मुझे कर्मातीत अवश्य बनना है। क्योंकि अगर शरीर छोड़ा किसी बात से कष्ट हो करके, अगर ये इच्छा हुई, क्योंकि अभी संकल्प सिद्धि का समय चल रहा है, ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तन की, मन की, धन की, संबंध की, समय की, कोई नहीं, बस ये शरीर छूट रहे तो अच्छा है, अगले जन्म में चलो फिर से बाबा का ज्ञान लेके चलेंगे। लेकिन पहले तो वो जितने 8-10 साल वो सब तो व्यर्थ चले गए ना। तो इस कारण से बाबा कहता है कैसी भी परिस्थिति हो, संकल्प भी नहीं, अगर संकल्प आया तो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। ये समय ही चल रहा है संकल्प सिद्धि का। हमें याद है बड़ी दादी भी ना जब थे तो बड़ी दादी हमेशा कहा करते थे, बस मैं भी बाबा से कहती हूँ कि बाबा बस अब हमें ये शरीर जब छूटे फिर दूसरा शरीर नहीं लेना पड़े। ठीक है, बहुत चलता रहा काफी समय तक, व्याधि भी रही, फिर जब दादी ने शरीर छोड़ दिया तो बाबा ने बताया था संदेश में, वो तो आप में से कईयों ने सुना होगा कि दादी का वैसे सब हिसाब किताब सब कुछ पूरा हो गया है, लेकिन किन्हीं आत्माओं से विशेष सर्विस कराने के निमित्त दादी वहां पर दादी को भेज रहे हैं। और फिर बाबा ने पूरा बताया था एक बार कि ऐसे जगह जन्म लिया जो बहुत प्रभावशाली परिवार है, खुद मतलब इतना ऐसा जैसे किंग नहीं, लेकिन किंग के पास ही जिसका किंग के ऊपर बहुत असर है और जो कुछ भी कार्य उस किंग के थ्रू करा सकता है, ऐसी जगह दादी ने बच्चे बच्ची के रूप में नहीं बच्चे के रूप में जन्म लिया है और उसके द्वारा कार्य कराना। भाव क्या है, हिसाब किताब हमारा जब सब चुक्त हो जाएगा तो भले अगर कोई शरीर भी लिया उससे हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो पुरुषार्थ करके हमने अपने को संपूर्ण बना लिया, लेकिन सेवा के निमित्त जैसे कि जाना हुआ है। तो एक ये लक्ष्य होना चाहिए। और साथ में मन जीते जगत जीत, मुझे एक दो घटना याद आ रही है। जगत जीत में जैसे मनुष्य व्यक्तियों के साथ साथ बाबा का एक ब्यूटी थी, बाबा बच्चों के साथ बच्चे जैसा, युवानों के साथ युवान जैसा, वृद्ध के साथ वृद्ध जैसा हो जाता था। हर एक को ये लगता था बाबा मेरा है, बाबा मुझे जितना प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। तो सबके दिलों पर जो यहां राज करता है वो ही वहां पर विश्व महाराजा बनता है। तो हमें यही देखना चाहिए सबके दिलों पर राज करने की बात। और वो कब होगा सबके दिलों पर राज? जब उनके प्रति बहुत स्नेह, प्यार, आदर, सत्कार, सम्मान और सहयोग की भावना होगी हर एक के लिए। उसके लिए कोई धन देने की बात नहीं, लेकिन जैसी ये फीलिंग होगी तो बस ये सबों के दिलों पर राज कराती है। तो ये बाबा से हर एक को ये महसूस होता था। तो ये तो हुई मनुष्यों की बात। और फिर पशु पक्षियों की बात, हमने एक दो इंसिडेंट सुनाते हैं। ये छोटा हिस्ट्री हॉल है ना, यहाँ पर भोग लगता था तो बस दो संदलियां इधर उधर पड़ी रहती थी, बीच की एक संदली संदेशी के लिए होती थी, या जो भी पार्टी में आते थे पार्टी वाले बैठ के अनुभव सुनाते थे, अनुभवों की लेन देन करते थे। एक तरफ बाबा बैठते थे, एक तरफ मामा बैठते थे। जब मामा नहीं थे रहे, बाबा थे, तो कई बार जो पार्टी आती थी तो पार्टी को लेके जो टीचर आती थी वो भी बताती थी स्टूडेंट्स की बात, और बाबा सुन के करेक्शन दिया करते थे। तो गुरुवार को जब भोग होता था तो बाबा जब संदेशी आती थी, संदेशी को दृष्टि दी और कहा हाँ बच्ची बस गो सुन कम सुन, और जरा सी दृष्टि बाबा देते थे एकदम संदेशी ध्यान में चली जाती थी। और फिर थोड़े समय बाद आती थी, संदेश वगैरह सुनाती थी सबको। फिर भोग जो होता था, भोग का बाबा वो कपड़ा हटा के, और भोग में जो भी बनता था हलुआ या कुछ भी थोड़ा सा चम्मच से लेके हथेली पर रखते थे ऐसे। बाबा के हाँ बच्ची आओ बच्ची आओ बच्ची, किस बच्ची को बुलाते थे? एक छोटी सी चिड़िया, बुलबुल जैसी होती थी, चू चू करती हुई, पहले कहीं नहीं दिखती थी, जब जैसे ही बाबा कहते थे आई फट से मेज पर बैठी, मेज पे से उठ के बाबा के हाथ पर आती थी। और जो भोग होता था, भोग थोड़ा खाया और उसके बाद बस थोड़ा हॉल का चक्कर लगा के, बड़ा ये रमणीक दृश्य होता था, चली जाती थी। और ये तो मतलब हुई चलो ये तो कोई प्यारा प्राणी है, लेकिन हिंसक प्राणी के साथ भी बाबा सबके लिए, बाबा के मुंह से बच्चा बच्चा, अभी जहां डिस्पेंसरी उधर की तरफ एक बार ऐसे ही भाई लोग कुछ थे, एक सांप निकला, बड़ा सांप। हाँ तो हमारे एक भाई होते थे बलदेव भाई, तो वो भी यहां पर थे, तो बाबा ने बस थोड़ा हल्ला सा हुआ और सब लोग, तो बाबा उधर से आ रहे थे, बाबा ने कहा क्या बच्चे क्यों भीड़ लगा रखी है? तो बताया कि बाबा सांप है, आप थोड़ा दूर रहो और इधर उधर ढूंढ के उसको सांप को पकड़ के ना थोड़ा उसके ऊपर डंडा वगैरह रखने का प्रयास किया सबने, पकड़ने का मारने का सब मारने के लिए। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे को क्यों कष्ट देते हो, क्यों मारते हो बच्चे को? हर एक के लिए बाबा के मन में बच्चा बच्ची, ये चाहे कोई कैसा भी हिंसक हो। और फिर बाबा ने बलदेव भाई को बुलाया और कहा बच्चे इस सांप को पीछे से पकड़ो, और मटका मंगवाया बाबा ने कि मटके में डालो ऊपर, फिर इसको छोड़ाना। तो सब भाइयों ने पुरुषार्थ करके उसे पकड़ा, पकड़ने का प्रयास, तो पहले तो वो भाई हिचके, सांप है कोई उन्हें अनुभव नहीं, फिर भी सबने बाबा ने कहा अच्छा बच्चे कोई बात नहीं बाबा आता है। जैसे ही बोला बाबा पकड़ता है तो सबने कहा नहीं नहीं बाबा आप थोड़ा अलग रहो हम लोग करेंगे। तो फिर उस भाई ने पकड़ा और कुछ नहीं, सांप भी जैसे ना यही पुराने जमाने में पढ़ा करते थे कि जो साधु संन्यासी होते थे जंगल में तपस्या करते थे उनके सामने हिंसक प्राणी भी आके पशु पक्षी भी शांति से बैठ जाते थे हिंसक, उनका योग का ऐसा प्रताप होता था, ऐसा ऑरा होता था। तो ये देखा पहले बहुत सांप वो हो रहा था, जैसे बाबा आए बिल्कुल वो शांत हो गया और बस जहां था वहां का वहीं उसे पकड़ा, पकड़ के मटके में डाला, ऊपर से कपड़ा उपड़ा बांध के छोड़ दिया। तो तो इस प्रकार ऐसे तो बहुत यज्ञ में अनेकानेक घटनाएं हैं, लेकिन ये तो ये बताया कि कैसे पशु पक्षी जीव जंतु उनको भी जो महान आत्माएं होती हैं उनके योग बल के कारण वो आत्माएं भी हिंसक से अहिंसक हो जाते हैं, और ये ही संस्कार फिर सतयुग में भी जाते हैं। तो ये तो कोई रही बात एक दो, लेकिन मुख्य बात ये है कि मन मेरा अगर कितना अचल होता जा रहा है चंचल से, उसको देखने की तीन मतलब उसके एस्पेक्ट हैं, तीन बातें हैं जिससे हम देख सकते हैं कि मन मेरा कितना धीरे धीरे मन को मैं जीतता चला जा रहा हूं। पहली बात विचारों की संख्या, क्वांटिटी ऑफ थॉट हम लोग बताते हैं मैनेजमेंट वगैरह में, और उसी से संबंधित है कि नॉर्मल केस में मनुष्य कितने संकल्प करता है लगभग, आप सभी तो सब जानते होंगे, हर 2 सेकंड में एक संकल्प आ जाता है। 2 सेकंड में एक संकल्प माने 1 मिनट में कितने संकल्प हो गए, 30 हो गए, और सारे दिन भर के अंदर करीब 25-30 हजार संकल्प होते हैं। मन उसे आसानी से हैंडल कर सकता है, विचार इतनी मन की क्षमता होती है। लेकिन जब कभी कोई ऐसी बात आती है जो मनुष्य को विचलित करने वाली होती है, कोई ऐसी, अभी आप बैठे हो बड़ी शांति से मन में ऐसे ही संकल्प बहुत कम चल रहे होंगे, लेकिन सडनली अगर मोबाइल पे मैसेज आ जाए आपका कोई नियर एंड डियर, कोई संबंधी, कोई बहुत प्रियजन, उसका एक्सीडेंट हो गया, बड़ा सीरियस है, या उसे कुछ ऐसा हो गया है, तो मन में बहुत विचार चलने लगे, क्या होगा, कैसे होगा, परिवार तो अभी छोटा है उसका, बच्चे छोटे हैं, आदि आदि। तो विचारों की संख्या जब बहुत बढ़ने लगती है, नॉर्मल केस में 25-30 हजार बढ़ के 40-50-60 हजार होती है, तो क्या है, क्वांटिटी ऑफ थॉट जैसे बहुत बढ़ जाती है, तो ये समझना चाहिए साथ साथ कि मन जो है शांत स्थिति से अशांत स्थिति की तरफ जा रहा है। तो नॉर्मल केस में तो क्या होते हैं, जब ऐसी स्थिति होती है मन के संकल्पों की संख्या बढ़ जाती है, स्ट्रेस्ड फुल सिचुएशन हो जाती है, तनाव बहुत हो जाता है, नींद नहीं आती, बहुत विचारों की संख्या जब बढ़ने लगती है, तो नॉर्मल केस में दवाई ले लेते हैं, कोई गोली ले लेते हैं। लेकिन योगियों के लिए बाबा ने बताया है जब ये क्वांटिटी ऑफ थॉट बहुत बढ़ जाए, तो दूसरी चीज है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की गुणवत्ता, उसी का ही नाम हमारा जैसे राजयोग है। तो फिर हम विचारों की संख्या बहुत बढ़ गई, उसको फिर हम अपने क्वालिटी ऑफ थॉट से कम करते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये ड्रामा है, ड्रामा का ये दृश्य मेरे सामने आ रहा है, और बस अभी मैं ये दृश्य देख करके भले थोड़ा विचलित हुई हूं, लेकिन धीरे धीरे मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होती चली जा रही हूं, अपने को पुनः नॉर्मल सिचुएशन की तरफ लाने का हम प्रयास करें। कैसे, क्वालिटी ऑफ थॉट को बढ़ाए, तो क्वालिटी ऑफ थॉट बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ थॉट अपने आप कम होगी। क्वालिटी माने गुणों, विचारों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको हम महान करते जाएंगे तो विचारों की संख्या अपने आप कम होती होती नॉर्मल हो जाएगी, और थोड़े समय में हम देखेंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे थी वैसे हो गई। और तीसरी चीज है डायरेक्शन ऑफ थॉट, विचारों की दिशा। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट, क्वालिटी ऑफ थॉट और डायरेक्शन ऑफ थॉट। तो मन का काम ही है संकल्प करना, तो मन संकल्प तो करेगा, लेकिन वो उसके कितने संकल्प की क्वांटिटी हो रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो मेरे हाथ में है। और तीसरी चीज विचारों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ थॉट। और जब विचारों की दिशा को हम निर्धारित कर देते हैं, बचपन में जो एक्सपेरिमेंट करा है ना सबने, सूरज के सामने एक लेंस रख देते हैं तो कैसे रेज एक जगह होती हैं और आ जाती है और कागज जल जाता है। तो इन तीन चीजों से मन की विचारों के हम पूरा निर्धारित कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ थॉट विचारों की संख्या, क्वालिटी ऑफ थॉट विचारों की गुणवत्ता और डायरेक्शन ऑफ थॉट विचारों की दिशा। और इसके आधार पर हम पुनः अपनी ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी विकार के वशीभूत होकर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नेगेटिविटी उससे हमारे अगर विचारों की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो इसीलिए जब भी कभी ऐसी संख्या बढ़े तो इस रीति से एक तो अपने को देखना चाहिए। तो मन इस रीति से बड़ा सहज रीति से जीता जा सकता है और मन जीते जगत जीत। तो और बातें तो बहुत हम करते ही हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सारा दिन भर में हमारे नॉलेज में है, लेकिन अगर हम प्रकृति जीत नहीं बने तो विश्व महाराजन नहीं बन सकते। जैसे देखा ना ब्रह्मा बाबा ने भी कैसे प्रकृति जीत बन करके पशु पक्षी इतने हिंसक प्राणियों को भी बाबा ने वश में करके किस रीति से करा उसका उदाहरण आपको बताया। लेकिन प्रकृति जीत बनना अगर प्रकृति क्यों, क्योंकि ये प्रकृति ही हमारा सबसे निकट का साथी है। कोई भी जन्म हो सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक भले दूसरे नाम रूप होंगे लेकिन होंगे तो ये पांच तत्वों का ही बना हुआ शरीर ना। तो इस कारण से इस प्रकृति जीत बनने के लिए हम क्या करें, उसके लिए भी बाबा ने बताया है। एक तो प्रतिदिन हम प्रकृति को इन पांच तत्वों को कुछ समय अवश्य योगदान करें, उनके साथ वार्तालाप करें, क्योंकि ये प्रकृति ही अंत में जैसे विनाश का कारण भी बनेगी और सतयुग के आदि से स्थापना के कारण भी यही बनेगी। तो किस रीति से करें, हम इन प्रकृति के तत्वों को हम अपना मित्र बना लें, क्योंकि जैसे बताया अंत मते सो गति। तो ये प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि अंत में इसके प्रकृति के कारण हम शरीर न छोड़े। अर्थक्वेक आया और हमने भी शरीर छोड़ा तो दुनिया वाले और हमारे में फर्क क्या रहा, सुनामी आई बाढ़ आई और बिल्डिंग गिरे और अभी थोड़े दिन पहले यूपी और इधर साइक्लोन आया हवा का बहुत लोग मर गए। तो इनके कारण ही प्रकृति के तत्वों के कारण भी अगर मैंने भी दुनिया वालों की शरीर तरह शरीर छोड़ा क्या अंतर हुआ, फिर तो इच्छा मात्रम अवित्या तो हुई नहीं। तो इसलिए आवश्यक यह है कि ये तत्व अंत में हमें पूरा साथ दें और उसके लिए ये आवश्यक है कि हम जो है इन तत्वों को अपना मित्र बना लें। कैसे मित्र बना लेंगे, किनके बीच में मित्रता होती है, किनके बीच में मित्रता होती है, हाँ समान संस्कार वालों के अंदर। तो मानो बाबा ने जो बताया है यही पांच तत्व विनाश के निमित्त हम ब्रह्मा बाबा की तरह अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। बस जब तभी तो बाबा ने अंत में 18 जनवरी को मुरली चलाई और बाहर आके बाबा ने बस बोला दरवाजे पर, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। सारा दिन भी बाबा ने ऐसे इंडिकेशन दिए, सुबह बाबा ने योग करा के मुरली नहीं सुनाई, बच्चों में बल भरा शक्ति भरी। फिर बाबा ने कहा एक एक यीशु दादी को कहा, बच्ची आज जितने भी पत्र के उत्तर लिखवाने हो लिखवा लो, कोई भी पत्र बिना उत्तर के ना रह जाए, क्योंकि मानो बाबा का हफ्ते में दो दिन बाबा ज्यादातर करके जब काफी पत्र इकट्ठे हो जाते थे तो उत्तर देते थे। वैसे तो डेली लिखा करते थे लेकिन कभी अगर ऐसा होता था बहुत आवश्यक काम तो नेक्स्ट डे लिखा करते थे। लेकिन बाबा ने बोला बच्ची आज सारे पत्र, क्योंकि बाबा को मालूम था आज मेरा ये इस शरीर में अंतिम दिन है। और बाबा ने क्या करा, तो इसने सारे पत्र बाबा ने लिख दिए। नक्की लेक का जो म्यूजियम है वो बिल्डिंग काफी दिन से लेने की बात चल रही थी, लेकिन पेंडिंग पड़ा था, बाबा ने उसी दिन उस बिल्डिंग पर फाइल पर साइन करा, अच्छा इसे सेवा के लिए ये ले लो। वो काम भी रहे पूरा हुआ। रोज रात्रि क्लास जैसे मधुबन में 8:45 बजे होती आप देखते हो, लेकिन उस दिन बाबा ने 7 बजे से पहले ही 6:30 बजे एक भाई है जमुना प्रसाद भाई, उनको बुला के बोला आज बाबा क्लास जल्दी लेगा शाम को, बच्चों को सब भोजन करके 7 बजे तक आ जाए। भोजन करके कोई ये सोचे चलो बाबा जल्दी क्लास ले रहा है 8 बजे तक, लेकिन बाबा को मालूम था बाद में ये परिस्थिति होने वाली है, उस बाद में तो कोई भोजन कर नहीं पाएगा, इसने सब बच्चों को ये अनाउंस भोजन करके बाबा क्लास में आ जाए, तो सब बच्चे भी आ गए। और उस दिन बाबा ने जो मुरली चलाई, तो जब कर्मातीत अवस्था के निकट आत्मा होती है तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो उस दिन बाबा ने जो भी मुरली चलाई, वैसे बाबा को कई बार कभी खांसी आती थी और जनवरी का महीना था, बहुत ठंडी थी, लेकिन उस दिन रात्रि क्लास सुनो आप, यहाँ पर वो सीडी मिलती है और पेन ड्राइव वगैरह, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि अंत समय जब हम भी शरीर छोड़ेंगे, अगर हमने भी राइट पुरुषार्थ किया होगा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में हमारे भी कदम होंगे, तो शरीर की सब व्याधियों के ऊपर, सब कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल विजय प्राप्त कर लेगा। और आपको याद होगा कि बाबा ने जब बच्चों ने बाबा से पूछा, बाद में भोग लगा ना, कि बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी, क्या आपको अनुभव हो रहा था जब आप शरीर छोड़ रहे थे, तो बाबा ने बताया अभी भी वो 18 जो मतलब जनवरी की अव्यक्त वाणी है उसमें 13 दिन के भी ये सारे संदेश हैं, वो आप कभी मिल जाए अगर लिटरेचर में तो जरूर पढ़ना। तो बाबा ने कहा बच्ची अंत समय ना कर्म भोग की और योग बल की बहुत युद्ध चल रही थी, कभी कर्म भोग महान हो जाता था, बहुत शरीर में कष्ट व्याधि होती थी, और कभी योग बल बढ़ जाता था, बहुत युद्ध चल रही थी, लेकिन युद्ध चलते चलते धीरे धीरे कर्म भोग कमजोर पड़ता चला गया, योग बल अपनी स्थिति को प्राप्त करता चला गया और आत्मा ने मक्खन से बाल की तरह शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने यही स्थिति हम सबकी भी होनी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो हमारे सामने रोल मॉडल है ना, तो सबसे अंत में अंत का पेपर ही ये है शरीर की व्याधि का, जितने भी बचे खुचे हमारे हिसाब किताब होंगे ना, कोई भी हिसाब किताब हो वो ये शरीर के द्वारा, क्योंकि ये ही इसी की, जितना भी कोई ये समझे मैं तो यंग हूँ बीमारी नहीं है मुझे कुछ भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, 63 जन्मों के हिसाब किताब का जितना भी वो यहीं से ही चुकतू करना पड़ेगा। तो अंत समय हमारे अंदर भी बहुत व्याधि होगी, बहुत कष्ट, लेकिन उस समय अगर हाय बाबा हाय क्या करूं दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे भी कमजोर संकल्प आ गए और उसमें शरीर छोड़ दिया, तो बस अंत मते सो गति हो तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए किसी भी हालत में ये देखना है कि योग बल को प्रधानता मिले और वो हमारे इसको मतलब हावी न हो, योग बल हावी हो जाए कर्म भोग हावी न हो। इस तरीके से बाबा ने का ये देखा, और एक हमारा भी पर्सनल अनुभव रहा, हम भी सामने बैठे मुरली सुन रहे थे, तो बैठे बैठे हमारे मन में, क्योंकि 18 जनवरी को बस ये भी एक हमारा भाग्य था, अंतिम समय बाबा ने जैसे बुला लिया हम यहाँ आ गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी। और एक तो ये देखा बाबा का कि हमेशा बाबा से मिलते थे, बाबा को सेवा समाचार हालचाल सब बताते थे, बाबा उसमें करेक्शन देते थे, सावधानी देते थे, लेकिन अंतिम 2 दिनों में ये देखा कि हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। 5-6 बार बाबा से मिले होंगे, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे और बाबा कहते थे अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब एक अक्षर भी नहीं। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। मन में दूसरे के क्या चल रहा है बिना उसके बोले हम उसकी बात समझ करके उसकी समाधान कर दें, उसकी मनोकामना पूर्ण कर दें। यही तो भगवान का लक्षण होता है। भक्त के सामने जाते हैं, भक्त अपनी इच्छा बोलता है। भक्ति में तो कई बार ये बताया, ऐसे अनेक दृष्टांत है, भक्त अगर भावनाओं के वशीभूत होके बोल नहीं पाता तो भी भगवान बस क्या बोलते हैं, तथास्तु, अंतर्ध्यान, भक्त की इच्छा पूरी हुई। तो इस रीति से 5-6 बार देखा, कभी सेवा का समाचार, कभी कुछ और सुनाने की बात, पुरुषार्थ की बात के लिए बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा कहते अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। यही स्थिति हमारी भी होनी है, क्योंकि कर्मातीत तो हम सबको बनना है ना। इसके लिए ये जरूरी है कि हम पहले इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। हमारे मन में अगर कोई संकल्प हुआ तो हम दूसरे का संकल्प नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मेरे संकल्प उसमें मिक्स हो जाएंगे। मानो कोई भी व्यक्ति है, उसकी कोई बात है मेरे माइंड में, प्री नोशन है, वो चाहे जितना भी बदल के आया हो अच्छा हो, लेकिन मेरे मन में अरे ये महात्मा तो ऐसी है, तो हम कभी भी उसके मन की बात पढ़ नहीं सकते यथार्थ, तो हम उसका समाधान भी नहीं कर सकते, उसको वरदान भी नहीं दे सकते तथास्तु का। तो इस कारण से ये जरूरी है पहले मैं अपने मन के संकल्पों के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करूं। और ये देखा अंत में बाबा ने जब ये शरीर छोड़ा तो बाबा का शरीर रखा रहा कितना, लगभग 65 घंटे से ज्यादा। 18 की रात को शरीर छोड़ा, 18 की रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद जब बड़ी दीदी पहुंच गए टूर से तो 2 बजे के बाद संस्कार किया गया, अग्नि संस्कार जहां शांति स्तंभ है वहां पर। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, कोई काला नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, कुछ नहीं। हम तो साक्षी हैं, हम तो वहीं थे, स्नान भी कराया। सबसे बड़ी बात, काफी हद तक बाबा के शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, नहीं तो शरीर आत्मा जब चली जाती है शरीर स्टिफ हो जाता है। तो ये प्रतीक है कौन सा, प्रकृति जीत का। बाबा ने इस प्रकृति के बने हुए 5 तत्वों को भी कितना पवित्र कर लिया था कि अंत समय तक उसने पूरा साथ दिया। और अंत में मैं ये बताना चाहूंगा कि हम प्रकृति जीत कैसे बने, बाबा ने कैसे कर लिया। तो अगर हम प्रकृति जीत पूरा बनना चाहते हैं तो एक तो हमें इनसे मित्रता करनी पड़ेगी, और जैसा आप बता रहे थे मित्रता सेम संस्कार वालों के बीच में होती है। तो हम अपने संस्कारों को प्रकृति के संस्कार जैसा बना लें। मानो जल तत्व है, जल तत्व हम चाहते हैं कि जल तत्व हमारी मृत्यु का कारण न बने, हमारी हमारे कष्ट का कारण न बने, तो हमें जल का कौन सा गुण धारण करना होगा। बहुत गुण है, लेकिन अभी तो समय के अभाव में मैं एक गुण बताऊंगा। जल में कौन सा विशेष गुण है, शीतलता, और सबसे बड़ी है फ्लेक्सिबिलिटी। जल फ्लेक्सिबल, देखो गिलास में लो गिलास जैसा बन जाएगा, कटोरी में लो कटोरी, चम्मच थाली जैसा लो जल सेट हो जाता है। ऐसे ही मैं देखूं कि मैं भी जल जैसा फ्लेक्सिबल हूं, हर आत्मा के संस्कार के साथ मैं अपना संस्कार मैच कर सकूं, कहीं पर भी संस्कार का टकराव ना हो। बस जैसा, ये ना सोचूं कि मेरे संस्कार के अनुकूल दूसरा अपने संस्कार बदले वो बने, नहीं, मैं अपना संस्कार बदल करके ऐसा फ्लेक्सिबल। और जब दूसरे के संस्कार से टकराव होगा नहीं तो ये जैसे जल का गुण धारण कर लिया, तो चाहे जितना भी फ्लड आएगा, सुनामी आए, कुछ भी हो, लेकिन जल मेरी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। कैसे नहीं बनेगा, वो आएगा, सुनामी आएगी, मानो ऐसे बहुत उदाहरण है, अभी तो समय के अभाव में नहीं बता सकूंगा, लेकिन राइट समय पर राइट टचिंग होगी। बाबा के महावाक्य है, मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूँ, मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूँ, उनके पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बस जिधर बढ़ेंगे। चाहे जितने भी उदाहरण देख लें, कजबुज का देख लें अथवा लाटूर का देख लें, सुनामी का देख लें, कुछ भी, लेकिन ये बाबा के महावाक्य। और बाबा कभी, लेकिन बाबा ने कहा है मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हूं, लेकिन बच्चों को मुझे यूज करना नहीं आता, मैं तैयार होता हूं बच्चे थोड़ा भी आह्वान करें मैं तुरंत उनकी रक्षा को पहुंच जाऊं, उनको ऐसा टचिंग करूं कि जहां सेफ्टी होगी, लेकिन बच्चे स्थूल चीज, स्थूल संबंधी, स्थूल बातों में कि वहां का हेल्प मिले, ये हेल्प मिल जाए, और बच्चे मुझे याद नहीं करते। इसीलिए अपने को देखना है, जब कभी कोई विकट परिस्थिति हो, मेरा कोई लोकल उसमें तो बुद्धि नहीं जा रही है, बल्कि मेरी बुद्धि सीधा बस बाबा क्या करना, और बाबा फिर देखो बंधा हुआ है। तो ऐसे अनेक गुण हैं, जैसे बताया शीतलता का गुण है, जल में आगे बढ़ने का गुण है, रुकता नहीं है, जल में ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक एक से आप, वो आपके लिए होमवर्क है, वो एक एक गुण को देखना, उसको मुझे कैसे करना है। ऐसे ही भारत में तो ज्यादा विनाश किस चीज से होगा, कौन से है, धरती हिलने से, बाबा ने कहा उसमें बहुत मरेंगे। तो मैं अपना संस्कार धरती की तरह, पृथ्वी की तरह वो धारण कर लूं। कौन सा पृथ्वी में मुख्य संस्कार है, सहनशीलता, और पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी में एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, उसमें हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। धरती के अंदर वो दाता है, सब चीज देती है, अनाज है, चावल है, फल फ्रूट, पेट्रोल, पानी, सब चीज जीवन की आवश्यकता है। ऐसी मैं भी दाता बन जाऊं, कोई भी मेरे सम्मुख आए खाली हाथ न जाए। उसका भाव क्या, कोई स्थूल चीजों के लिए तो हम नहीं बन सकते, लिमिटेशन है, कपड़ा है, पैसा है, स्थूल चीज है, लेकिन जो आत्मा जिस भावना से आए ना, हम उसके, उसको, उसकी वो भावना पूर्ण कर सके, उसको शीतलता दे सके, सहयोग दे सके, उसके अंदर बल भर सके। और ये सब सूक्ष्म चीजें हैं जिसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी सूक्ष्म जो वाइब्रेशन है, हमारा ऑरा है, हमारे विचार हैं, प्रकंपन है, वो उस आत्मा को संतुष्टि का अनुभव कराएंगे। जैसे बाबा के सम्मुख भी जाता था, बड़ी बड़ी दादियों का सबका पूछ लो, बस कोई भी जाता था, हम लोगों को ये अनुभव होता था बाबा से ये पूछेंगे, गए सामने, बाबा की दृष्टि पड़ी और निहाल हो जाते थे, सब भूल जाते थे क्या पूछने के लिए आए, सब संतुष्टि का, तृप्ति का अनुभव होता था। तो खाली बाबा से नहीं, जैसे हमें बाबा से अनुभव हुआ, ऐसे सारे दुनिया को हमारे से ये अनुभव होना है, तभी तो दुनिया लिखेगी भक्ति मार्ग में, बस सबको बताएंगे हाँ जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हमें नहीं देखेंगे, बाबा को देखेंगे हमारे अंदर, क्योंकि भगवान इनकी इच्छा, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। हम लोग तो साधारण है, किसी में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उनको ये अनुभव होगा हमारे से। तो धरती का अगर ये गुण धारण करा दातापन का, अभी से ही हम ये प्रयास करें, कोई भी मेरे सम्मुख आए खाली हाथ न जाए। जो भी हमारे पास है, सहयोग है, स्नेह है, वो सब चीजों का जैसे हम दान अंदर ही अंदर संकल्प करेंगे, वो संकल्प उस तक पहुंचेगा, वो तृप्त आत्मा अनुभव करेगा, और इस प्रकार से हमने धरती को कंट्रोल कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया। इनके साथ हम वार्तालाप करें, बहुत इसके उदाहरण है, अमेरिका तक के उदाहरण है इसके बहुत सारे, अभी तो जो मुझे समय मिला है। इसी तरह वायु का कौन सा सबसे बड़ा गुण है, हल्कापन का। वायु हर चीज को ना ऊपर उठाती है, तो पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है। दोनों में विपरीत गुण है, लेकिन सह अस्तित्व है, दोनों साथ साथ रहते हैं। तो इसी तरीके से बहुत आत्माओं के साथ हमारे विपरीत वो संस्कार होंगे, लेकिन फिर भी हम सहअस्तित्व की भावना से साथ साथ रहे, प्यार से रहे। संस्कार तो सबके अलग ही अलग हैं, रहेंगे ही। तो वायु की तरह अगर हम हल्का रहना सीख जाएंगे, कोई भी परिस्थिति आए हम भारी ना हो, हमारा मूड ऑफ ना हो, भाई आज खाना नहीं खाते, मन भारी है, आज ये है, नहीं, बिल्कुल सदा हल्के रहेंगे तो वायु का क्या हमें सहयोग मिलेगा। अंत समय जितने भी साइक्लोन आएंगे, बड़े बड़े 200-300 किलोमीटर की रफ्तार से वायु चलेगी, बहुत उड़ जाएंगे। कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना, वहां साइक्लोन आया, वो फलानी मोटर छत पर पहुंच गई हवा में उड़ के, छोटी वहां गाय भैंस वो ऊपर चली गई, लाइक दैट बहुत ऐसी परिस्थितियां आएंगी। लेकिन वायु जो है, जितना भी हो, इनका तत्वों का यही विशेष गुण है क्या, कि समय से पहले ये आपको टचिंग करते हैं। किनको? जिनकी लाइफ जो है मोर इन हार्मनी विद नेचर है। आज भी अर्थक्वेक दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता, लेकिन कौन बता सकता है? छोटे ये छिपकली है, सांप है, थोड़े ये दूसरे पशु वगैरह है जो जमीन के अंदर, उनको ये सिक्स सेंस, दे आर हार्मनी विद नेचर, प्रकृति के साथ वो रहते हैं। वो आप देखो तुरंत बिल से निकल के कुछ मिनट पहले, बाद में नहीं, बाद में निकले तो क्या फायदा हुआ, कुछ मिनट पहले भागना शुरू कर देंगे एकदम तुरंत। ये हमने देखा हुआ, हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग में हमें एमटेक में पढ़ाया गया था, अर्थक्वेक स्पेशल सब्जेक्ट था, किस प्रकार से ये अभी तक भी वैज्ञानिक कोई नहीं, हाँ इनके ऐसा टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन वो चेंज होती है और ये महसूस कर लेते हैं। जिनका लाइफ स्टाइल मोर इन हार्मनी विद नेचर है, प्रकृति के साथ, ऐसे हमें भी आत्मा की प्रकृति जो है उसे, प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, इनके अनुकूल बनाना होगा। तो जैसे ही कोई भी घटना होने वाली होगी, मेरा आत्मा जो है इस शरीर के माध्यम से वो कैच कर लेगा और मेरे पैर तुरंत वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। जो बाबा के महावाक्य हैं वो बिल्कुल चरितार्थ अभी भी होते हैं। लेटर जब आते हैं, बहुत लेटर क्लास में पढ़ के सुनाए जाते हैं, वहां पर ये अर्थक्वेक आया तो ये हुआ, बाबा के किसी भी बच्चे का बाल बांका नहीं हो सका। तो ये वायु का गुण है, हल्का रहे हम, हर परिस्थिति में भारी ना हो। और आकाश का क्या गुण है? आकाश का गुण है विशालता, महानता। तो ऐसे ही हम, बाबा कहता ना फिराक दिल बनो, बाबा कहता है उसके लिए सबसे बड़ा गुण कौन सा आवश्यक है फिराक दिल बनने के लिए? क्षमा का गुण। महान आत्माओं में और गुण होंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्षमा का गुण होगा। किसी भी आत्मा के लिए उनके मन में इल फीलिंग नहीं होगी, बदले की भावना नहीं होगी, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसे इसका मजा चखाऊं, ऐसा करूं, नहीं। तो ये भावना जो होगी क्षमा का गुण, ये ही आत्मा को महानता की। हमने खुद देखा ब्रह्मा बाबा के सामने ऐसी ऐसी घटनाएं आती थी। एक घटना तो हमारे सामने कलकत्ता में मेला लगा था, उसमें आग लगा दी लोगों ने, आर्य समाजी वगैरह ने। तो बाबा के हमारे तीन वकील बहुत वरिष्ठ थे, संतराम जी और वहां पर मोती चंद जी और एक और, तो उन्होंने कहा बाई चांस यहां पर थे बाबा, हमें उनसे, हमारे पास प्रूफ है, हम केस करेंगे, 100% जीतेंगे, हमारे पास प्रमाण है, बस आप हमें छुट्टी दो, हम उनको वो करें। तो बाबा ने कहा कि नहीं, बाई चांस हम इधर थे, हमारा धनबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, वहां से स्ट्राइक हो गई थी वहां, तो यहाँ आए हुए थे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी भी बच्चों के ऊपर केस नहीं कर सकता, वो बेचारे अज्ञानी, उन्हें मालूम नहीं है कि उन्होंने किसका नुकसान किया है, लेकिन आगे के लिए आप सावधानी रहो, इंश्योरेंस करा दो और ऐसा ऐसा करो, लेकिन बाबा कभी भी उनके ऊपर केस। तो क्षमा का भाव, ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत रीति से कितनी घटनाएं देखी, बाबा सदा क्षमा करते, किसी की बात को दिल पे रखते ही नहीं थे। यही बड़ी दादी में भी गुण था, प्रकाशमणि दादी जी में भी एकदम भूल जाते थे, तो ये है आकाश की तरह। तो उससे क्या लाभ होगा कि आकाश मार्ग से आने वाली जो भी रॉकेट होंगे, मिसाइल होंगे, बम होंगे, वो थोड़ी दूर तक विनाश करेंगे, लेकिन हमारे पास में आते ही सूली से काटा। कुछ दिन पहले वरदान भी था बाबा ने, दूर तक विनाश होगा वहां तक, लेकिन आपका सम्मुख आपके बगल में एकदम सूली से काटा हो जाएगा। तो ये बाबा के रक्षा की विधि है, लेकिन उसके लिए हमें फिराक दिल, क्षमा दिल वो बनना पड़ेगा। और जितना क्षमा दिल होगा तो आकाश में क्लाउड बर्स्ट होंगे, बादल फटने की घटनाएं होती है ना, अभी भी न्यूज में बहुत, एकदम केदारनाथ में भी इतने लोग मर गए थे बादल फटने से, अभी भी कल परसों भी आया था उत्तराखंड में 3-4 जगह ऐसा हुआ। लेकिन भले वो फटेंगे, प्रकृति अपना काम करेगी, लेकिन हमारे चरण स्पर्श करके चले, जितना भी पानी आएगा हमारे चरण स्पर्श, हम होवनहार देवता, जल को भी देवता कहते हैं, वायु देवता, अग्नि देवता, इनमें गुण है तभी तो देवता कहते हैं। तो इस कारण से हम उनसे शेक हैंड करेंगे। बाबा की एक 96 में बहुत बढ़िया मुरली चली थी जब हम लोगों की पर्यावरण यात्रा निकल रही थी, और वो हमने कनानूर जो केरल में है उस दिन वहां यात्रा थी, पहले तो ये मोबाइल और ये सब थे नहीं, तो बाबा की मुरली जब वहां पर आई और फिर हम लोगों ने ये निर्णय किया कि कल हम वहां पर जाके योग करेंगे समुद्र तट पर। अगले दिन सुबह करीब 15 भाई बहन हम लोग गए, और यही संकल्प था समुद्र के पास, बिल्कुल शांत समुद्र था। हे जल देवता, अगर आप तक हमारी वाइब्रेशन पहुंच रही है तो आओ, भगवान के महावाक्य हैं, हम चैतन्य होवनहार देवता यहाँ बैठे हैं और आपको भी जल देवता कहते हैं, आओ हम शेख रेंट करें, आप हमारे चरण स्पर्श करके जाओ। ये संकल्प में सब 4 बजे से बैठे, 4:15, 4:30, 4:45, 5:05 में पता नहीं कहां से एक बड़ी लहर आई, कोई भी ज्वार भाटा कुछ नहीं था, बहुत शांत समुद्र था, वो आई जहां पर हम लोग बहुत दूर पर योग कर रहे थे, हम सब होवनहार देवताओं के चरण स्पर्श करके वो जल चला गया। तो ऐसे बाबा ने कई बताए हैं, कई एक्सपेरिमेंट हैं, आप देखोगे योग के प्रयोग करें अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, तो क्या होगा, पता चलेगा कि भगवान ने हमें कितना महान बना दिया है, कितना शक्तिशाली बना दिया, हम साधारण नहीं है। खुद अपने को हम जिस नजर से देखते हैं तो फिर दुनिया भी उस नजर से देखती है, अपने को मानतम। इसी तरह लास्ट तत्व है अग्नि तत्व, सूर्य तत्व, अग्नि का स्वरूप सूर्य है ना, तो सूर्य का भी एक ये विशेष गुण है, कौन सा है, सूर्य का, अग्नि का क्या गुण होता है, अग्नि में जो भी चीज जाती है, डाली जाती है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है वैसा अपना ज्वालामुखी स्वरूप बना हो कि जो भी आत्मा आए, रोती हुई आत्मा आए, उसका रूप बदल जाए, वो हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए, सुख के अनुभवों में डूब लहराती हुई चली जाए। वो सब जो बताए या तो शॉर्ट करके ये बताना होता है, लेकिन एक एक तत्व के आप देखना कि कम से कम 8-8, 10-10 गुण है, वो होमवर्क है, वो आप देखना करना, और फिर देखोगे ओहो कितना बाबा ने हमें भरपूर कर दिया है। तो सॉरी बहन जी को माफी की 15 मिनट ज्यादा ले लिए, लेकिन आप सब चात्रिक आत्माओं के सामने बाबा का ये मैसेज कन्वे करते हुए हमें भी थैंक्स टू सिस्टर कि इन्होंने चांस दिया और आज आप सबसे रूरवान हो सकी। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर ज्ञान सागर हैं, इतनी सारी सूक्ष्म और गहन बातें आपके अंदर भरी हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है।